اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گناہوں کے اثرات، اس میں سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے گناہ ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں لے چلتے ہیں۔ اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ترک گناہ کی بات ہو رہی تھی، پیچھے سے بھی ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ انسان بہت سارے ایسے گناہ کر لیتا ہے کہ جو اس کو مزید گناہوں پہ مائل کر دیتے ہیں۔ تو ہم بک کے اعتبار سے پیج 31 کے مڈل سے پڑھیں گے۔ اب یہ لسٹ بنائیں، گناہ کرنے سے جو نقصان ہوتے ہیں وہ گناہ چھوڑنے سے فوائد میں بدل جاتے ہیں۔ مثلا کیسے؟ ترک گناہ سے اور کچھ نہ ہو، مندرجہ ذیل امور کیا کم ہے؟ مثلا مروت کا برقرار رہنا، عز و جاہ کا محفوظ ہونا، مال و دولت کی حفاظت، مخلوق کی محبت، معیشت میں وسعت، بدن کی راحت، دل کی قوت، نفس کی راحت، دل کی نعمت، سینے کی کشادگی، فساق و فجور، کہتے نافرمانی کو، فساق و فجور کے شرور سے امن، غم اور حزن میں کمی، نور قلب کی حفاظت، ذہنی پریشانی سے حفاظت، وہم و گمان سے بڑھ کر رزق کی آمد، نیک اعمال کی توفیق، علم کے حصول میں لوگوں میں آسانی، لوگوں میں اچھی شہرت، چہرے پر روب و دبدبا، لوگوں کی حمایت، مدد کا حصول، دعا کی جلد قبولیت، اللہ تعالیٰ سے محبت، ملائکہ سے قربت، شیاطین انس و جن سے دوری، لوگوں کی اس کی خدمت کرنے کی خواہش و تمنا، موت سے بے خوفی بلکہ موت سے دیدار الہی کے شوق میں خوشی، دنیا کی بے ثباتی کا ادراک، یعنی کہ دنیا جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، آخرت کے عظیم ہونے کی سمجھ بوجھ اور اس کے حصول کی حرص، نیک اعمال کی حلاوت و شیرینی کا احساس، حلاوت ایمان سے بہرہ وری، حاملین عرش کی دعاؤں کا مصداق، کرامن کاتبین کی خوشی، ہر وقت ان کی دعاؤں کا مستحق ہونا، ایمان، فہم و فراست و معرفت میں اضافہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول، گناہوں سے توبہ پر خوشی۔ یہ گناہ ترک کرنے کے چند دنیاوی فوائد ہیں، آثار ہیں۔ جب انتقال ہو جائے تو ملائکہ جنت کی خوشخبری سنائیں گے اور اعلان کریں گے، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا کے قید خانے سے نجات پا کر جنت کے باغوں میں داخل ہوگا، اور قیامت کے دن لوگ سخت گرمی میں پسینے سے شرابور ہوں گے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا، اور جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہوگا۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس عظیم کتاب الجواب الکافی میں گناہوں کے برے آثار کو گنا ہے۔ فائدے کے لیے یہاں صرف ان کے عنوانات ذکر ہیں جن کے برے اثرات سے جسم و روح متاثر ہوتے ہیں۔ آپ یہاں رکیے، یہ بتائیے کہ آپ نے کاؤنٹ کیے کہ گناہ چھوڑنے کے فوائد کتنے ہیں۔ مجھے تو پڑھتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ کبھی ہر بندے تک یہ پیغام پہنچ جائے جو پریشانیوں کا شکار ہے، جس کو معاشی پریشانی ہے، جس کا دل گھٹتا ہے، جو گناہوں میں ہے، جس کے دل سے نور چلا گیا، اس کو پتہ لگ جائے کہ گناہ چھوڑ کر تم یہ ساری نعمتیں پا لیتے ہو۔ یقین کیجیے، آج میں اور آپ جو ہیں اپنے گناہوں کے کرنے یا ان کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو آپ نے بعد میں کرنا کیا ہے کہ اس میں جتنے بھی پوائنٹ تھے اس کو 1, 2, 3 لکھ کے اس کی لسٹ بنانی ہے۔ مثلا جیسے میں سوچنے کے لیے بتا رہی ہوں، مروت کا برقرار رہنا، اس پہ ایک لکھ لیجیے، عز و جاہ کا محفوظ ہونا دوسرا لکھیں، مال و دولت کی حرص کو 3 دیں۔ اسی طرح یہ پوری لسٹ تیار کریں اور پھر ہر ایک چیز کے اوپر تھوڑی دیر غور کریں، تدبر کریں، کیا واقعی یہ سب کچھ میرے لیے ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ پورا ایک خوبصورت زندگی کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ हम गुनाह छोड़कर सिर्फ जन्नत के करीब नहीं हो रहे होते, दुनिया को भी जन्नत बना रहे होते हैं, और हम में से हर एक किसी न किसी तरह से इन चीज़ों को चाहता है। तो आपने इस पैराग्राफ पे गौर व फिक्र करना है, यह आपकी होम असाइनमेंट है। एक एक चीज़ पे सोचिए, गौर कीजिए, अगर है आपके पास खुश हो कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैंने फलां गुना छोड़ दिया था ना, उसकी वजह से आपने मेरे चेहरे पे चमक रख दी। वहाँ अच्छा, मैंने वो गुना करना चाहा नहीं किया तो मेरे शौहर के माल में कितनी बरकत हो गई। इस तरह से सोचिए, और देखिए इसमें सबसे बढ़ के दुआओं की कबूलियत। हम कितना शोर मचाते हैं, हाय दुआओं की कबूलियत, दुआओं की कबूलियत, लेकिन इसके लिए गुना छोड़ने पड़ते हैं। अब इसके ऑपोजिट, और ये दुनिया की थी और आखिरत में तो एक बेखौफ व ख़तर की ज़िंदगी है, अब जो हम बनाएंगे ये इमाम इब्न कय्यम की किताब अल जवाबुल काफ़ी में गुनाहों के असर आता है, इसको लिखें। अब इसको सुनते वक्त आप साथ साथ 1 2 3 करके अपने हाथों से लिखें, ये भी एक लिस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक मैंने पढ़ाई थी और इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, छोटा सा एक बुकलेट है गुनाहों के दुनियावी असरात, आप उससे भी फ़ायदा बाद में डिटेल से उठा सकते हैं। यहाँ सिर्फ नाम है, नंबर एक गुनाहों के बुरे असरात में, और इसमें से हर एक को आपने अपने ऊपर लेना है। इमेजिन कीजिए, ओहो मेरे गुनाह इतने बढ़ गए, ओहो मुझे इल्म का शौक़ नहीं रहा इसकी वजह मेरे गुनाह। और आप देखेंगे कि इसको सुनने के बाद बंदे को सबसे ज़्यादा गिले शिकवे और गुस्सा और रंज अपने ऊपर आता है कि असल में मैं ही हूँ जो ये सारा कुछ करती हूँ, ये मेरे अपने कामों की बुराई है जो मुझसे ये काम लेते हैं। तो सबसे पहला गुनाहों का असर, इल्म और रिस्क से महरूमी। क्या आज लोग इल्म से महरूम हैं? सच बताइए, शौक़ है इल्म का? इल्ला माशाल्लाह, आप जैसे लोग जिनको शौक़ है, अल्लाह इस शौक़ को बढ़ाए भी और बरकरार भी रखे। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला से दूरी। क्या अल्लाह से दूर है? ये गुनाह का असर है। और आप देखेंगे जितना आप गुनाहों में पड़ते जाएंगे, अल्लाह के लफ्ज़ की कोई मोहब्बत नहीं रहेगी, कोई डर ही नहीं रहेगा। है तो है, नाराज़ है तो ठीक है, फिर इट्स ओके, हम क्या करें फिर? अब ये अंदाज़। फिर मामलात में तंगी, आज लोगों के मामले तंग है, अल्लाह हम पे अपना रहम कर दे। चेहरे पर जुल्मत, अंधेरे छाए में, सब कुछ है लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी कलवन्नस है। कब्र पर अंधेरा छाना, बददिल और बदन की कमज़ोरी। आज आप देखिए कितनी अच्छी खुराकें हैं, कितनी सहूलतें हैं, कहीं फलां मदद, कहीं फलां डॉक्टर, कहीं फलां फलां फलां, लेकिन क्या इन सब के बाद हमारे जिस्म में ताकत है? फिर अल्लाह ताला की इताअत से महरूमी, इसको तो आप खुद सोच सकते हैं, आज दुनिया में जितना अल्लाह की इताअत से बंदा भागता है उतना शायद कभी ना भागता हो। फिर उम्र में बेबरकती, उम्र है बरकत कोई नहीं है, बुराई से बुराई का जन्म लेना, दिल के इरादे की कमज़ोरी, रुजू इल्लाह में सुस्ती, दिल से गुनाहों की बुराई का मिट जाना, ज़रर में मुब्तला होना, ज़िल्लत में वाक़े होना, अक़ल में फसाद, दिल पर मोहर लगना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का मुस्तहिक होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का मुस्तहिक ना होना। आपको तो अल्लाह के नबी की हज़ारों दुआएं हैं, तो उस बंदे का हिस्सा उसमें से निकल जाता है जो गुनाहों में मुब्तला है। फिर इसी तरह बरज़ख़ की मुख्तलिफ़ सज़ाओं में मुब्तला होना, यानी कब्र का अज़ाब, रस्ते में जो चीज़ें तकलीफ़ में आती हैं, एक एक चीज़ पे गौर करें। फिर इसी तरह ज़मीन और दरिया और बहरों भर में फसाद बरपा होना, ये तो कुरान में भी आता है। हया का ख़त्म होना, गैरत का फना होना, अल्लाह ताला की अज़मत का दिल से निकलना, अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक न बनना, नेमतों का ज़वाल, अनजाने खौफ में मुब्तला होना, दिल का मुर्दा होना, बसीरत से बेबहरा होना। आपने लिस्ट बनाई, 20 से ज़ायद असरात हैं गुनाहों के। फिर हम कैसे किसी और को कुछ कहें, जो तुम्हारे अपने हाथों की बोई हुई फसल है जो काटनी पड़ेगी। गुनाहगार हमेशा शैतान और नफ्स के हाथों मुकैद होता है, ये जुमला लिख लें, बल्कि इसको हाईलाइट कर लें। गुनाहगार हमेशा शैतान और नफ्स के हाथों में कैदी होता है। कैदी को आप जो मर्ज़ी काम कहेंगे उसने करना है, तो हमारा फिर नफ्स और शैतान मिल के हमसे गुनाह के काम कराते हैं, जिसकी वजह से इज़्ज़त और मर्तबे से गिर जाता है। अच्छे इल्काबात और नामों से महरूम होकर बुरे बुरे नामों से मासूम होना, خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی تمام شرور و آفات جو بدن اور قلب پر آ سکتے ہیں وہ سب گناہوں ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مضمون کی طوالت پر معذرت خواہ، کیا کیا جائے، یہ سارے امور ہمیشہ کی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہم کمزور ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وعظ و نصیحت سے ان کو دھونے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے وعظ کی برکت سے ان گناہوں سے بچ سکے اور علام الغیوب کے دربار میں توبہ کی توفیق ہو جائے۔ ان مواعظ میں سے ابن جوزی کا یہ قول بھی ہے جس کو انہوں نے سعید الخاطر، جو ان کی کتاب ہے، اس میں ذکر فرمایا ہے۔ بڑا پیارا قول ہے، نوٹ کیجئے گا۔ گناہ سے خود کو بچاؤ کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے، خصوصاً خلوتوں کے گناہ۔ اس لیے خلوت کیا ہوتی ہے؟ تنہائی میں، اکیلے میں جو گناہ کیے جاتے ہیں، خصوصاً خلوتوں کے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مبارزت انسان کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ ان گناہوں کے کتنے برے اثرات ہیں۔ مبارزت کس کو کہتے ہیں؟ آمنا سامنا ہونا یا مقابلہ کرنا۔ قرآن میں بھی آتا ہے جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تالوت جالوت کے لشکروں میں آیا ہے لفظ۔ کیا پتہ چلا کہ گناہوں سے ہر صورت خود کو بچائیں۔ آپ دیکھیں گاڑی چلاتے ہوئے لوگ روڈ پہ دوسری گاڑیوں سے خود کو بچاتے ہیں نا، آپ چلتے ہوئے دوسروں سے ٹکراتے تو نہیں ہیں نا، آپ اپنے گھر کو مٹی سے صاف کرتے ہیں۔ کتنی خرابیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، جو بھی ہم ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو گناہوں سے بھی بچیں، کیونکہ انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے اس سے۔ پھر اسی طرح شیخ مصطفیٰ سائی اپنی کتاب ہاکذا علمتنی الحیات میں کہتے ہیں، اس کتاب کا نام کیا مطلب ہے اس کا، یہ ہے وہ جو مجھے میری زندگی نے سکھایا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف ٹائم ایکسپیرینسز۔ کیا کہتے ہیں؟ جب تمہارا نفس گناہ کا قصد کرے تو اسے خطرے کی یاد دلاؤ، اگر اس سے باز نہ آئے تو لوگوں کے اخلاق یاد دلاؤ، اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو لوگوں کے سامنے شرمندگی سے اسے ڈراؤ، اگر اس کے باوجود بھی باس نہ آئے تو جان لیجئے کہ تو اس وقت انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں آ چکا ہے، گویا وہ انسان نما جانور بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچائے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس پہ آپ نے اپنے نفس کو ٹٹولنا ہے، کیا میں اپنے نفس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی ہوں؟ آپ دیکھیں نا، اس کو تادیب کہتے ہیں، خطرہ دکھاؤ، دیکھو گناہ ہوگا، پھر لوگوں کے اخلاق کے، لوگ تو اتنے اچھے ہیں، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ گے، اور اگر ان ساری باتوں کے بعد پھر بھی نفس گناہ پہ لگے تو سمجھ لے کہ اس وقت انسان کے اندر حیوانیت کی عادتیں آ چکی ہیں۔ پھر آپ کا میرا، آپ دیکھیں، محاسبہ اسی سے ہی ہوگا۔ جب تک میں اور آپ اپنے اوپر نظر نہیں رکھیں گے بات نہیں بنے گی۔ یہ باتیں پڑھنی آسان ہے، کرنی بھی آسان ہے، لیکن ان باتوں کو سن کر اس پہ جمنا، غور و فکر کرنا، یہ ہے اصل میں امتحان آپ کا اور میرا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک مستقل ٹاپک ہے، نیا ٹاپک ہے، پیج 34، گناہوں کے برے اثرات میں سے گناہوں کی وجہ سے امم سابقہ، یعنی پہلی امتوں پر آنے والے عذاب۔ قرآن پاک میں ہم اس کی کئی مثالیں پڑھتے ہیں، اور ہر قوم کا واقعہ اس کی دلیل ہے کہ جب انہوں نے گناہوں میں سرکشی کی، شیر ہو گئے گناہوں پہ، تو اللہ نے پکڑ لیا۔ زمین پر انسانیت کی عمر کافی طویل ہے، مختلف اقوام مختلف ادوار میں یکے بعد دیگرے آتے رہے، اور ہر قوم کی عنایت رحمانی سے رہنمائی کے لیے انبیاء کرام آتے رہے، جو ان کے خالق السماوات والارض کے سیدھے راستے کی طرف بلاتے اور رہنمائی کرتے رہے۔ نیک تینت یعنی اچھی طبیعت ان کی دعوتوں پر لبیک، جبکہ ظالم و سرکش لوگ انکار کرتے رہے۔ حق و باطل کا یہ مارکہ شروع سے چلتا رہا، اللہ تعالیٰ ظالمین سے دنیا ہی میں بدلہ لیتے رہے اور مختلف عذابوں میں ان کو مبتلا کرتے رہے۔ اتنی بات تو سمجھ گئے نا کہ جب بھی انبیاء کرام نے آ کر پیغام دیا تو جو اچھی طبیعت کے لوگ تھے، شریف النفس تھے، وہ تو اس چیز کے اوپر لبئی کہتے رہے جس کی دعوت نبیوں نے دی تھی، لیکن جو برے قومیں تھیں، جو برے لوگ تھے جنہوں نے اپنی عادتیں خراب کر لی تھی، وہ واقعی ان چیزوں سے اپنے آپ کو پھر نہیں بچا سکے، اور آخر میں پھر ان کی پکڑ ہو گئی۔ اب جو مختلف عذاب آئے تھے، دیکھیے اس کو اگر تھوڑا سا سوچ کے اپنے اوپر لے کر بولے نا، پھر سمجھ آتی ہے۔ قرآن میں پڑھتے ہیں، ہاں فلاں قوم پہ پتھروں کا عذاب آیا، آج آئے تو کیا ہوگا، میرے اوپر آئے تو کیا ہوگا، اس شہر میں آئے تو کیا ہوگا، خبروں کی خبریں چھپیں گی، نیوز بلٹن چھپ جائیں گے، اتنا کچھ ہوگا۔ تو ان میں سے ہر ایک کو پڑھتے ہوئے سنتے وقت ہم نے اپنے آپ کو ادھر محسوس کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اپنے عذابوں میں نہ پکڑ۔ कुछ किस्में जो कि गुनाहों की वजह से, यार यहाँ हर जगह लफ्ज़ गुनाह पे गौर करेंगे तो फिर बात वाज़े होगी, वरना तो बस कानों से टकराए हुए लफ्ज़ हैं। और याद रखिए कि आजकल भी इस किस्म की कई आफतें आती हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नबी का काम होता है कि बताए कि क्या चीज़ अजाब है और क्या चीज़ अजाब नहीं है। पहला अजाब तूफ़ान का, ये अजाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया। उसके मतलब इरशादे खुदाबंदी है, कज़बत कौम नूहिन फकज़बू अब्दना वकालू मजनून वज़दुजर फदा रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर फ़फ़तहना अबवाब अस्समाई बिमाई मुनहमिर फ़फ़ज्जरना अल-अर्ध उयूना फ़ल्तक़ल मा वला अम्रिन क़द कुदिर। सूरत कमर आयत नंबर 9 से 12 तक इसमें ये बात पता चली। तो कौम नूह के गुनाहों ने उनको अल्लाह के तूफ़ानों का शिकार कर दिया। फिर दूसरा ज़ाब्ता सख्त तुंदो तेज़ हवा का अजाब, जिससे नुकसान के सिवा कोई फ़ायदा ना हुआ। इस अजाब में हूद अलैहिस्सलाम की कौम मुबतला हुई। इसके मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत ज़ारियात में आयत नंबर 42, वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिम रीहल अक़ीमा मा तज़र मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जालतुहु करमीम। फरमायात पर हमने ऐसी भांच हवाएं भेजी जो किसी चीज़ को नहीं छोड़ती थी जिस पर से वो गुजरती थी, और उसको जले हुए भुस की तरह कर दिया। तो कौम के ऊपर इतनी ज़बरदस्त आंधी आई थी। फिर इसी तरह बिजली की कड़क, ये अजाब कौम सालेह पर आया। सूरत कमर 31 में आता है, इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतन वाहिदतन फकानू कहशीम मुख्तदिर। बेशक हमने उन पर एक चीख का अजाब भेजा और वो सब किसी भी बाड़े की कटी हुई घास की तरह हो गए। फिर इसके बाद कौम लूत पर अजाब आया संगवारी का, पत्थर बरसे आसमान से। ये अजाब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर मुसल्लत हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व लूत अन इस काल अली कौम ही अतातून अल्फाखिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिन अलआलमीन इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। सूरह आराफ़ आयत नंबर 80 है कि जब कौम ने इस कबीह फ़ेल को तर्क करने से इनकार किया तो अजाब में मुब्तला हुई, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा जामरूना जलना अलिया साफिला वम तरना अलिया हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद। सूरत आराफ़ की आयत 18 भी है और 80 भी है। तो क्या पता चला कि कौम लूत पे पत्थरों की बारिश हुई थी, उन्होंने कभी फेल किया, अल्लाह ने उनके ऊपर कभी अजाब भेजा। फिर इसी तरह तूफ़ान, टिड्डी, जूं, मेंढक और खून का अजाब, सूरत अल अराफ़ आयत 23 में आता है कि यह अजाब फिरौन और उसकी कौम पर आया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़रसलना अलैहिम तूफ़ान अबल जराद अबल कुम्मल वद्दफ़ादिया वद्दम आयात मुफस्सलात फस्तकबरू वकानु कौमम मुजरिमीन। बस हमने उन पर तूफ़ान का और टिड्डी का और जुओं का और मेंढकों का और खून का अजाब भेजा। बड़ी वाज़ आयतें थी, बस उन्होंने तकबर किया और वो मुजरिम कौम थे। तो एक कौम पर 7 अजाब आए, सोचिए ज़रा उसने फिर भी नसीहत ना ली तो कितनी बदबख्ती है। इसी तरह से किस्म किस्म के अमराज और वबाओं में मुबतला करना, ये अजाब सिरात मुस्तकीम से हर कजराह को दिया जाता है। चुनाचे जिनसी बीमारियाँ कुफार के इज्तमाई गुनाहों का नतीजा, अखलाकी खराबी, कत्ल व गारत गरी, डाका, चोरी, शराब नोशी, दूसरे मनशियात की आदत और दूसरे जराइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आम बेराहरवी, लड़के और लड़कियों का बेमुहाबा, बेमुहाबा मीन किसी लिमिट से बग़ैर अख्तलात यानी मिलना घुलना मिलना, इसका बहुत बड़ा सबब है। अमेरिका से एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें यौमिया हिसाब से जराइम की तफसील है, ये उन्हीं की रिपोर्ट है, पढ़ के सुना देती हूँ। अमेरिका में रोज़ाना 1253 अफराद चर्स और हीरोइन के जुर्म में पकड़े जाते हैं, यानी 1253 लोग। 180 औरतें अगवा होती हैं, 180, 53 यानी 53 अफराद कत्ल होते हैं, 2618 2618 गाड़ियाँ चोरी होती हैं, 1282 1282 बच्चे बग़ैर निकाह के पैदा होते हैं, 5962 5962 अक़द निकाह से मुंसलिक होते, जबकि 2986 यानी 2986 तलाक़ें होती है, यानी तकरीबन आधे लोगों की तलाक हो जाती है। 90 बिलियन बोतल शराब पी जाती है, और ये सारे फिगर्स एक दिन के हैं। 2740 2740 बच्चे घरों से राह फरार इख्तियार करते, 2740 नाबालिग लड़कियां जिना से हामिला होती हैं, 3231 औरतों का हमल साकित होता है, 68493 6893 अफराद रोज़ाना नाकाबले इलाज बीमारियों का शिकार होते हैं, बल्कि हलाकत खेजी का ये खौलनाक सिलसिला है तवील। दूसरे ममालिक भी इसमें पीछे नहीं, इनकी अकलों पर पर्दा पड़ गया, शैतान के नक्शे कदम पर चल निकले, याद इलाही से रुख फेर चुके, जिनके बारे में इरशाद खुदाबंदी है व मन आरादान ज़िक्री फ़ाइन्ना लहू मई शतंदन का। कौम लूत का कभी हमल और जिनाब मगरब व मशरक़ों में आम मजमे में ना सिर्फ आम हो गया बल्कि कमरे आदत काम बन गया, इससे भी बढ़कर इन्हें कानूनी हैसियत हासिल हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, आपका इरशाद क्या है, आपने फरमाया, खम्सुन इज़ा इब्तलीहिम बिहिन्ना वाउज़ु बिल्लाही तदरकहुन्ना वलम तस्खरुल फाखियतु फी कौमिन कत्तुन हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशाफीहिम अत्ताउना औ जाअल्लती लम तकुन मसनत फी इस्लाम फहुमुल्लज़ीन मसनौ। फिर आपने फरमाया, ज़हर सूफ़ अलर्दी अनज़लल्लाहु बासहु बिअहलिल अर्दी। दोनों का मतलब क्या है कि जब इंसानियत हिदायत के रास्ते से हट जाती है तो अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब डाल देता है, तो उनकी बीमारी है जहाँ फुख़ शाम होता है, मुसीबतें और मुश्किलात आ जाती हैं। और इसी बात को शायर ने शेरों में कहा, कहते हैं कि आदत व रब्बी का तुब्बा व समूत, तेरे रब की कसम कौम आद और तुब्बा, तो हम कहाँ आएंगे जाएंगे, यानी वो बड़ी बड़ी कौमें तबाह हो गईं तो आज हम कहाँ जाएंगे। फ़ालाम नसहब व नऊत फल गाफिलून नाकिबून अनिल हुदा हूँ वल हिजारत लिल हमीमी वकूत, राहे हक से हटने वाले गाफिल और पत्थर दोनों जहन्नुम के ईंधन हैं। या गाफिलीन अनिल अज़ाबी तनब्बहू वल्लाहि इन्न हयातकुम सतबीदा, ए अज़ाब इलाही से गाफिल लोगो बेदार हो जाओ, अल्लाह की कसम तुम्हारी ज़िंदगी अनकरीब ख़त्म होने वाली है। फिर इसी तरह कहते हैं, इन्नल्लज़ी अफ़नल अल-अवाइल क़ादिर अन युख़लिकल बाक़ीन वहुवा मजीद, जिस ज़ात ने पहलों को फ़ना किया वो बाकियों को भी फ़ना करने पर क़ादिर है, बस इसी की ज़ात बुलंदो बालातर है। और सूरत अहज़ाब आयत 62 में आता है, सुन्नतुल्लाहि फ़िल्लज़ीन ख़लौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहलों में गुजर गई और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे। तो क्या पता चला, बहुत बड़े बड़े अजाब भी आए कौमों पे, छोटे भी आते हैं। यहाँ चंद चीज़ें नोट कर लें, गुनाहों की वजह से इंसान के ऊपर इनफरादी अजाब भी आते हैं, इज्तमाई अजाब भी आते हैं, और एक इंसान जब इनसे नहीं बचता तो अल्लाह ताला पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेता है। और हमें अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करनी है कि मालिक तू हमें अपनी पकड़ से बचा। अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा ला तक्तुल नबी गज़बी का वला तुहलिक नबी अज़ाबी का वाफिन क़ब्ला ज़ालिका, के अल्लाह अपनी पकड़ से बचा, अपने गुस्से से न मार। आज इंसानियत जिस तरह बरमला गुना करती दिखती है, ये किसी से कुछ ढका छुपा नहीं है। बहुत शौर से दुआ करें, गुनाहों से ऐसे डरें जैसे सांप से, बिच्छू से, कैंसर से और न जाने किस किस चीज़ से हम डरते हैं। गुनाह इंसान के लिए दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देते हैं शख्सियत को। तो अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे के हम अपनी इस्लाह फरमाएं, इस पर ज़रूर गौर व फिक्र कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और साथ ही साथ ये दुआ कीजिए, अल्लाह हमें, हमारी नस्लों को, हमारे मर्दों को, हमारे भाइयों को, सब को अपनी अमान में रखे। अब एक आखिरी बात देकर सेशन पूरा करूँगी कि हम अपने गुनाहों को ख़ुद पहचानें, ये कैसे होगा। इसके लिए एक इंसान को अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह मुझे वो निगाह दे जो गुनाहों को पहचाने। और इल्म से ताल्लुक़, याद रखिए कि किताब हाथ में होती है ना तो बंदा भटकता है तो फिर वापस आ जाता है, इसको तोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो फिर बाकी बातें पीछे रह जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व तूबु इलैक। इंशाल्लाह इससे अगले सेशन में हम गुनाहों की कुछ किस्में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, अल्लाह ताला हमारे लिए उसको आसान करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।